प्रिय संघ भाई और बहनों, नमो बुधाय, जय भीम। So I'm not really going to give a talk this afternoon.
तो आज के दोपहर को मैं कोई प्रवचन देने नहीं जा रहा हूँ।
First of all, I'm going to talk about what we're doing this evening.
मैं सबसे पहले यह बताने जाऊंगा कि आज शाम को हम क्या करने वाले हैं।
And then I'm going to give you some clues for reflection.
और फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आपके चिंतन के लिए।
But first I'm going to read you that verse from Bhante's poem, Taking Refuge in the Buddha.
लेकिन उसके पहले मैं वह यानी उसका कड़वा जिसे गाथा कहते हैं मैं वो पढ़ना चाहता हूँ भंते के कविता से।
Not in Nirvana's stillness, not in Samsara's flow, not in the heavens above us, not in the hells below, not in thought or word or action, not where mind and object meet, with wisdom and compassion, my place is at thy feet.
Na nirvan ki sthirta mein, na sansar ke pravah mein, na upar swarg mein, na hi narak tal mein, na vichar shabd evam kruti mein, ना मन और वस्तु स्पर्श में पर प्रज्ञा और करुणा के साथ मेरी जगह आपके चरणों में।
So that's the theme of our retreat.
तो यह हमारे शिविर का यानी शीर्षक है।
Placing ourselves at the feet of the Buddha.
हम अपने आप को बुद्ध के चरणों में रख रहे हैं।
Bhante says, my place is at thy feet.
Bhante कहते हैं कि मेरी जो जगह है वह आपके चरणों में।
That's where we belong, at the feet of the Buddha.
और वही हम वही हमारा स्थान है वही हम वहां से हम है बुद्ध के चरणों से।
And our whole retreat is aimed, is designed to place us there.
और पूरा जो शिविर की जो कल्पना है संकल्पना है वह वही है हम अपने आप को बुद्ध के चरणों में रखने जा रहे हैं।
Everything we've been doing this morning is preparing us to go to the feet of the Buddha.
जो कुछ भी हम सुबह से तैयारी कर रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं बुद्ध के चरणों में जाने के लिए।
And of course this represents the stage of dhammic rebirth.
और वह प्रतिनिधित्व करता है धम्मिक पुनर्जन्म के बारे में।
We're opening up to the Buddha.
हम अपने आप को बुद्ध के प्रति खुला कर रहे हैं।
So I think as the days go by we'll be more and more ready to be at the feet of the Buddha.
जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा या गुजरता जाएगा हम अधिक से अधिक तैयार होंगे बुद्ध के चरणों के पास जाने के लिए।
So let me just describe the detail of what we'll do.
तो मैं आपको बताऊंगा विश्लेषणात्मक स्वरूप से कि क्या हम करने जा रहे हैं वहाँ।
Because it's not really easy to give instructions down there.
यह बहुत कठिन होता है वहाँ पे कोई भी निर्देश देना।
So we'll just do what we're going to do.
तो बस हम वही करने वाले जो हम करने वाले।
Of course, we'll all arrive there by 7:15.
तो हम सब लोग वहाँ 7:15 बजे पहुँच जाएंगे।
It'll take 40-50 minutes to walk if you want to walk.
अगर आप चलना चाहते हैं तो 40 मिनट चलने के लिए लगते हैं।
It takes 20-30 minutes in a rickshaw if you can find one.
और 20 मिनट लगते हैं अगर आप रिक्शा में जाते हैं तो।
When you get there, make sure you do not have your mobile phone.
तो जब आप वहाँ जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ मोबाइल फोन नहीं होने चाहिए।
Because they will frisk you, and if they find a mobile phone, they won't let you in.
क्योंकि वो आपको आपको चेक करते हैं और आपके पास अगर मोबाइल मिला तो फिर आपको वापस भेजते हैं।
And then you have to check it in further back.
तो फिर आपको वापस पूरा चल के आना होगा और वहाँ जाना होगा।
And that will take quite a long time.
और फिर वो वहाँ मोबाइल जब देंगे वहाँ और फिर समय लगता है जमा करने के लिए।
So be in plenty of time because there's a police inspection before you enter.
तो पर्याप्त समय होता है लेकिन वहाँ समय भी लगता है जब दो गेट से हम अंदर जाते हैं चेकिंग के बाद।
We will have a carpet, but you'll need some cushion.
तो वहाँ पे कुछ दरी होगी लेकिन आपको कुछ कुशन चाहिए होगा।
There are a lot of mosquitoes, so be ready.
तो वहाँ पे काफी मच्छर होते हैं।
And it will get cold.
और फिर थोड़ा शाम को ठंडा भी हो जाता है।
Although the temperature is rising today, but it will be cold, I think.
आज तो थोड़ा यानी गर्मी है वैसे, लेकिन शाम में काफी सर्दी लगने लगती है.
But we will have to just have our supper and go.
लेकिन इसीलिए जैसे ही हम खाना खत्म हो जाए हम उधर चले जाने चाहिए.
And when you get down there, just find the place where we are.
तो हमें ढूंढिए जहाँ कहीं भी हम वहाँ रहेंगे जब आप वहाँ जाएंगे.
It'll be either immediately under the tree or probably further back from the tree.
या तो बिल्कुल पेड़ के यानी बोधि वृक्ष के बाद में ही जो जगह वहाँ हम होंगे, या फिर उसके पीछे एक जो चबूतरा मैंने जो बताया था उस चबूतरे में हम लोग होंगे.
Some of the community members will be down there. They will have prepared things for us.
कुछ कुल के लोग वहाँ होंगे, वो कुछ तैयारी वहाँ करेंगे हमारे लिए.
And just find your place.
तो आप अपनी जगह ढूंढिए.
Maitreya Nagarjuna and I will sit in the middle, but towards the back of the crowd.
तो सब लोग जहाँ बैठे रहेंगे तो मैत्रीवीर और मैं हम आपके थोड़ा पीछे बैठेंगे, बीच में आप लोगों के.
So that our voices can be heard.
ताकि हम जो भी बोलेंगे वो आप सुन पाए.
We don't want to shout. We don't want to use a loudspeaker.
वह हम loudspeaker use नहीं करना चाहते. हम थोड़ा जोर से बोलेंगे.
But it will mean that we all need to be attentive and try to be in harmony.
इसलिए हमें थोड़ा सामंजस्य और साथ में सुनना होगा, ध्यान देना होगा.
So we'll just sit for 2 or 3 minutes.
तो 2-3 मिनट हम वहाँ बैठेंगे.
And then we'll start with puja.
और फिर हम पूजा करेंगे.
We're going to read Bhante's verse where we're down there.
तो यह जो भंते की कविता है वो हम पढ़ेंगे वहाँ.
Everything will be in English and in Hindi.
हर चीज अंग्रेजी और हिंदी में होगी.
Or Hindi and English.
या फिर हिंदी या इंग्लिश में होगी.
We're going to try reciting the poem in call and response.
तो ये जो कविता है पहले कोई कहेगा और उसके बाद सब लोग कहेंगे, इस आधार पर होगी.
We'll just see how that goes.
हम देखेंगे कैसे ये होता.
Because that's our way of bringing Bhante into the event.
तो वह हमारा प्रयास है भंते को हम अपने शिविर में लाएं.
And it's our way of remembering what we're trying to do.
और फिर हम याद करेंगे क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं.
And then we'll recite again call and response the threefold puja.
और फिर से एक बार जैसे पहले कोई कहेगा और बाद में उसके उसके पीछे सब लोग कहेंगे, वैसे हम तीन अंगी पूजा करेंगे.
Not everybody will have heard this puja.
अब हर किसी ने यह पूजा सुनी नहीं होगी.
Bhante wrote it many years ago.
भंते ने इसे काफी साल पहले लिखी है.
And we've only recently translated it into Hindi, or rather Maitreya has only recently translated it into Hindi.
लेकिन अभी अभी ही यानी कुछ ही एक साल पहले मैत्रीवीर ने इसे हिंदी में अनुवाद किया.
But we think it's very appropriate because it's just about the Buddha.
लेकिन ये बहुत ही अनुकूल है क्योंकि ये पूरी बुद्ध के ऊपर ही है.
And it's very focused.
और ये बहुत ही केंद्रित है बुद्ध के ऊपर.
And it's very much about our relationship with the Buddha.
और ये यानी इसका संबंध हमसे और बुद्ध के साथ क्या है इसके बारे में.
So after there are first 2 sections.
तो पहले दो अंगों के बाद.
Opening reverence and reverence to the 3 jewels.
प्रारंभिक प्रणाम और त्रिरत्न को नमन इसके पश्चात.
So just do your best to respond to Maitreya or me.
तो जो कुछ भी सुबुति या मैं कहूँगा उसे आप प्रतिसाद दीजिए.
And then we'll do the refuges and precepts.
फिर हम त्रिशरण और दशशील लेंगे.
And then the positive precepts first in Hindi, then in English.
पहले फिर विधायक पंचशील अंग्रेजी में, बाद में हिंदी में.
And we'll try to get the English ones right tonight. And then we'll do the Buddha puja.
और फिर हम बुद्ध पूजा कहेंगे.
And then we'll do the third section, which is called offerings to the Buddha.
और तीसरा जो अंग है उसका वो है बुद्धार्पण, जो बुद्ध को हम अर्पण करते हैं वो अंग है.
And it's about the offering of flowers, candles, incense, of course.
और तीसरा अंग जो है वो है दीप, अगरबत्ती और पुष्प अर्पण करने का.
And then we'll start chanting the Shakyamuni mantra.
और फिर उसके बाद हम शाक्यमुनि मंत्र का पठन करेंगे.
We'll use the mantra that Bhante gave us.
हम उस मंत्र का उपयोग करेंगे जो भंते ने हमें दिया है.
Of course, the standard mantra for Shakyamuni is Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha.
तो जो मूल जो मंत्र है जो सुबुद्धि ने अभी कहा वह है.
But we told Bhante that that's difficult for general people in India.
लेकिन हमने भंते को बताया कि यह कठिन होता है सर्वसामान्य लोगों के लिए.
Because it sounds like Hindu mantras.
क्योंकि यह हिंदू मंत्र के जैसा प्रतीत होता है.
Because in a Hindu yajna, swaha is the point at which the offering is made.
क्योंकि हिंदू यज्ञ जो होता है उस परंपरा में जब स्वाहा कहते हैं तब वो अर्पण करते हैं उस यज्ञ में ऐसा अक्सर माना जाता है.
So Bhante said, no problem.
तो भंते ने कहा कोई बात नहीं.
Leave out the om, it doesn't matter.
तो ओम को छोड़ दीजिए फर्क नहीं पड़ता.
It's okay, but you don't have to have it.
यह ठीक है लेकिन जरूरी नहीं वो वहां रहे.
And then I asked him, well, what should we do instead of swaha?
तो हमने उनको पूछा कि स्वाहा की जगह फिर हम क्या कहें.
And Bhante just closed his eyes.
तो भंते ने अपनी आंखें बंद की.
And just silent for a minute or so.
एक मिनट के लिए वो शांत रहे.
And then he just said, Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Sadhu. That was it.
तो वही वो फिर मंत्र हुआ.
So that came to Bhante in a sort of inspiration.
तो भंते को एक प्रेरणा से वह मंत्र आया.
And it's just as effective as the other one.
वह उतना ही प्रभावी है जितना कि पहला मंत्र प्रभावी था.
What's important is our intention, not the words.
क्या महत्वपूर्ण है हमारे हमारा यानी हेतु शब्द महत्वपूर्ण नहीं.
But I'd like that mantra to be heard at the Bodhi tree.
लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि इस मंत्र को सुना जाए बोधि वृक्ष के परिसर में.
So we'll recite that mantra together.
तो इस मंत्र को हम इकट्ठा कहेंगे.
And what's good about that mantra, people from the Theravada will feel that's okay.
तो यह मंत्र के बारे में अच्छी बात यह है कि जो थेरवादी परंपरा के लोग हैं उन्हें अच्छा लगेगा.
The Tibetans, the Chinese, the Vietnamese, they will also feel it's okay.
तो जो तिब्बतीन हैं, चाइनीज, वियतनामीज या अन्य परंपरा के लोग हैं उन्हें भी वह अच्छा लगेगा.
So we'll be in relationship to all the different yanas.
तो हम इससे सभी यानों के परिपेक्ष में अपना संबंध भी प्रस्थापित कर सकते
हैं. So we'll just start reciting that.
तो इसे हम कहेंगे.
And then we're just going to have five people to make the offering on behalf of all of us.
तो हम सब की ओर से पांच लोग अर्पण करेंगे.
Because if all of us make an offering, well, we'll be locked in overnight.
तो अगर हर एक हम में से अगर अर्पण करेगा तो काफी समय जाएगा, उतना समय में बंद हो जाएगा वो.
So we'll just ask five people to go to the Bodhi tree and offer flowers, candles, incense.
तो हम केवल पांच लोगों को बोलेंगे कि आप जाइए और मोमबत्ती, अगरबत्ती और पुष्प जो है वो अर्पण करेंगे.
But they're doing it for all of us.
लेकिन वो हम सब के लिए कर रहे हैं.
So when they go, you go in heart.
तो जब वो जाएंगे तब आप अपने मन से जाइए.
And we'll keep on chanting all that time.
तो हम तब तक मंत्र को कहते रहेंगे.
So we'll be chanting for some time.
तो कुछ देर तक हम कहते रहेंगे.
When they come back, we'll just gradually let the mantra die away.
तो जब वे वापस आएंगे तब मंत्र को हम धीरे धीरे स्थिर होने देंगे.
Then just sit.
फिर केवल हम वहां कुछ देर बैठेंगे.
I'm going to say a little bit more about what you're doing when you're just sitting in that situation.
मैं थोड़ा कुछ कहूंगा जब आप केवल वहां बैठेंगे तब आप क्या करेंगे उसके बारे में.
But before I do that, I want to say something about the end.
उसके पहले मैं उसके बारे में कुछ बताऊं कैसा हम अंत करेंगे या समाप्ति करेंगे उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं.
They start clearing people out of the grounds of the Mahabodhi temple at 8:45.
9:15 वो लोगों को बाहर निकलने के लिए कहना शुरू कर देते हैं.
They blow a whistle.
वो सीटी बजाते.
That's the sign that we need to go.
तो वह यानी हमें संकेत होता है जब हमें जाना होता है.
So we'll conclude with the Dhammapalangatha a little bit before that.
उसके पहले हम Dhammapalangatha कहना शुरू कर देंगे.
And then you need to make your way out, not running, but not dawdling.
तो हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे दौड़ते हुए नहीं लेकिन
going very, very slowly.
बहुत धीरे भी नहीं जाना है.
Yes, neither Diri nor
Jaldi.
Between Diri and Jaldi.
Between Diri and Jaldi.
Dildi. If you take a long time, if you've got leg problem, whatever, make sure you get out.
तो अगर आपको तकलीफ होती है चलने में या आप धीरे चलते हैं तो आप यानी उस वक्त से निकल जाइए कि आप बाहर निकल सके.
If you want to stay overnight, that's okay.
अगर आप रात भर वहां रुकना चाहते अच्छी बात है.
But it's cold.
लेकिन वहां सर्दी लगेगी.
Okay, so it's not a question of really rushing out, but you can't wait.
तो यह दौड़ने की बात नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा देर हम वहां राह नहीं देख सकते.
And then come back, go to bed.
और फिर हम वापस आएंगे सोने चले जाएंगे.
If you can, try to keep silence.
अगर हो सके तो मौन रखने की कोशिश कीजिए.
What we do down there, I think, will have quite a powerful effect on us.
क्या होगा जब हम वहां होंगे उसका एक प्रभाव होगा हमारे मन के ऊपर.
And it's really good to let that effect echo inside you.
और यह बहुत अच्छी बात है कि वो जो प्रभाव है उसकी गूंज आपके मन में रहे.
If you don't let it stay on when inside you, it will come less easily next time.
अगर वो गूंज आपके मन में रुकी नहीं रही तो दूसरी बार आने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे.
गूंज, echo, is that? गूंज.
गूंज.
Nice word, गूंज. So let the गूंज continue.
तो वो जो गूंज है उसे निरंतर रखिए.
And then we'll be ready for tomorrow morning.
फिर हम अगली सुबह के लिए वैसे ही तैयार रहेंगे.
And we'll have the same program as today.
तो जैसे आज का दिनचर्या रही वैसे ही कल की भी होगी.
Except that we'll begin the second session of the morning at 10:15, not 10:30.
दूसरा जो सत्र है 10:30 की बजाय हम 10:15 बजे शुरू करेंगे.
So we can do a little bit more meditation.
ताकि हम थोड़ा ज्यादा ध्यान कर पाए.
But I was extremely impressed by the way everybody immediately got down to meditation.
मैं बहुत ही प्रभावित हुआ जिस पद्धति से सभी लोग बिल्कुल सीधे ध्यान में चले गए.
It's a very still, silent atmosphere this morning.
आज की सुबह बहुत ही स्थिर और शांत वातावरण था कक्ष में.
So yes, again, the worth of our order is proved.
तो फिर से हमारे संघ की जो योग्यता है यह सिद्ध होती है ऐसे कारणों से.
It's not easy just to start running, as it were.
बहुत मुश्किल होता है तुरंत दौड़ लगाना लेकिन हमने वो लगाई.
But everybody was there, really working hard.
लेकिन हर व्यक्ति यहाँ शांत था और सभी लोग यानी अच्छा प्रयास कर रहे थे.
So yes, what are we going to do when we get down there?
तो क्या हम करेंगे जब हम वहाँ जाएंगे?
You can't really meditate while you're down there.
जब आप वहाँ हैं तो आप वहाँ ध्यान नहीं कर सकते.
There's so much noise, so many things going on.
बहुत सारा आवाज होता है और बहुत सारी चीजें चलते रहती है.
We just don't know what chanting is going to happen. We don't know.
अब कौन सी चैंटिंग या कौन सा पठन वहाँ चलता रहेगा हमें पता नहीं.
We'll even hear the mullah chanting from the masjid.
तो मस्जिद से भी वो अजान जो है यो मुल्ला जो कहते हैं वो सुनाई आती है.
We'll hear Hindu bhajans.
Hindu bhajan भी आपको सुनाई आएंगे.
And we'll hear so many different Buddhist chanting.
तो ऐसे प्रकार के अलग अलग बौद्ध जो पठन है वह भी आपको सुनाई आएगा.
So you can't really meditate in the sense of doing a concentration practice.
तो वहाँ पे हम एकाग्रत होकर ध्यान करना है ऐसा ध्यान करना मुश्किल है.
The practice down there really is just to open up to the Buddha.
वहाँ पे जो सही साधना जो है वो है अपने आप को बुद्ध के प्रति खुला करने की.
And we're helped by so many other Buddhists who are there for that same reason.
और सभी बौद्धों से हमें वो मदद होती है क्योंकि वो सभी उसी कारणवश वहाँ आते हैं.
Yeah, a lot of people are there just as tourists. Even some of the monks are there just as tourists.
वहाँ बहुत सारे लोग टूरिस्ट होते हैं, बहुत सारे भिक्षु भी टूरिस्ट ही होते हैं.
But there are plenty of people who are there with great devotion.
लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे होते हैं जिनकी गहरी श्रद्धा होती है.
So we're participating with them.
तो हम उनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं.
Yes, we're our own Triratna Bauda Sangha.
यह सही है कि हमारा त्रिरत्न बौद्ध संघ है.
But we're linked to the great Sangha of the whole Buddhist world.
लेकिन समूचे बौद्ध जगत का जो महासंघ है या बड़ा जो संघ है उसके साथ हम जुड़ते हैं.
So all you can really do, all I can do when I go down there, is just open up to the Bodhi tree.
तो आप क्या कर सकते हैं? कम से कम मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने आप को बोधि वृक्ष के प्रति खुला कर देता हूँ.
If you like, open up to the Vajrasana, which is the other side of the Bodhi tree, between the Bodhi tree and the temple.
या अपने आप को आप उसके प्रति खुला कीजिए जो बोधि वृक्ष है और जो विहार है उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे वज्रासन है उसके प्रति.
There's a big stone slab that was put there by Samrat Ashok.
वहाँ पे एक यानी पत्थर का जो यानी शिला है चबूतरा जैसे रखा गया है वो सम्राट अशोक जी ने वहाँ रखा था.
And that is the spot on which the Buddha sat when he gained enlightenment.
वही बिल्कुल स्थल था वहाँ बुद्ध बैठे थे जब उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई.
But there's a problem for us.
लेकिन हमारे लिए अब एक समस्या है.
He's not there.
अब वहाँ बुद्ध नहीं है.
The Buddha isn't there.
अब बुद्ध वहाँ उपस्थित नहीं है.
The Buddha lived 2,500 years ago, but he's not there now.
बुद्ध 2,500 साल पहले वहाँ बैठे थे, अब वो वहाँ नहीं है.
Now it might seem that that's something that you can just overcome with imagination.
अब ऐसे लग सकता है कि आपके कल्पना शक्ति से आप उन्हें ला सकते हैं या वैसा आपको महसूस नहीं होता.
But I think it's really important for us to start by recognizing that the Buddha is not there.
लेकिन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस बात से पहचानना कि वहाँ बुद्ध नहीं है.
I've had my own strong experience of this down there.
मेरे अपने निजी अनुभव है जब मैं वहाँ रहता हूँ.
That something happened here so long ago, but it's not happening now.
बहुत ऐसी प्रभावशाली बात एक महान घटना उस जगह पे हुई लेकिन अब वो नहीं है.
So after an experience like that, I spoke to Bhante about it.
तो ऐसे अनुभव के पश्चात मैंने एक बार भंते से इसके बारे में बात की थी.
And he said that's really important.
और भंते ने कहा यह महत्वपूर्ण है.
He said that before you can feel the Buddha's presence, you have to feel his absence.
उन्होंने कहा कि इसके पहले आप बुद्ध की उपस्थिति को आप महसूस कीजिए, आप उनके अनुपस्थिति को भी महसूस करना चाहिए.
You could say it's the same with anybody else, huh?
आप ऐसा कह सकते हैं आपके अपने किसी मित्र के या किसी के बारे में.
You know, you think of a friend.
आप किसी मित्र के बारे में सोचते हैं.
And you think, oh, he's not here.
और आप सोचते हैं अभी वो यहाँ नहीं है.
And then you go to see him.
Hmm? और फिर आप उन्हें मिलने जाते हैं.
First of all, you have to recognize the absence.
तो सबसे पहले आपको यह पहचानना होता है कि वह अनुपस्थित है, वहाँ गैर यानी मौजूद नहीं है.
And Bhante said he thought that we needed to put much more emphasis on experiencing the absence of the Buddha.
तो भंते कहते हैं कि इसके ऊपर जोर देना भी जरूरी है कि भंते की बुद्ध की जो अनुपस्थिति है उस अनुपस्थिति के बारे में.
But what did he really mean by absence, huh?
लेकिन क्या उनका मतलब है अनुपस्थिति के बारे में?
Obviously in the immediate sense the Buddha isn't there.
अब तुरंत अगर हम ऐसा सोच सकते हैं कि वहाँ बुद्ध नहीं है.
He entered Mahaparinirvana in Kushinagara 2,500 years ago.
कुशीनगर में 2000 यानी 2,500 साल पहले वो महापरिनिर्वाण का कुशीनगर में हुआ.
His body left.
उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था.
Although actually some of the relics from his body will be in the Mahabodhi temple tonight.
लेकिन उनकी जो अस्थियां है बुद्ध की उन अस्थियों आज वहाँ कुछ अस्थियां उनका प्रदर्शन होने जा रहा है.
You know that some of the ashes of the Buddha were found in various places.
आपको पता होगा कि अलग-अलग जगह में बुद्ध की अस्थियां मिली थी.
Some were found at Sanchi.
कुछ अस्थियां सांची में भी मिली.
Along with the relics of Shariputra and Moggallana.
Shariputra and Moggallana की अस्थियों के साथ उनकी अस्थियां मिली थी.
And those are now in the Mahabodhi temple.
अब वो महाबोधि विहार में है.
They're there for the next week.
अगले सप्ताह तक उनका प्रदर्शन है.
Just when we're there.
जब हम लोग वहाँ हैं.
Isn't that wonderful?
कितनी सुंदर बात.
So those relics are there inside the temple.
तो वो जो अस्थियाँ हैं वह मंदिर में है यानी विहार में है.
So some bones, some small bone relics.
तो कुछ तो भी उनका अंश वहाँ पर है.
Of course, that's still not really the Buddha.
अब निश्चित वह भी बुद्ध नहीं.
It's just the bones, huh?
अब वे केवल हड्डियाँ हैं.
But at least those bones are there.
लेकिन कम से कम वो तो वहाँ है.
And the tree is there.
अब वृक्ष वहाँ है.
That tree is the the grandchild of the original tree or something like that. I believe that genetically it's the same tree.
Genetically ka matlab anuvanshik tarike se wahi wo vruksh hai.
So yeah, something is the same.
To wo yani saman hi hai, wahi ped wo hai, usi anuvansh se aaya hai.
The rocks under the ground are the same.
Uske niche jo patthar hai, wahi patthar hai.
The stars overhead are the same.
आपके ऊपर जो सितारे वो भी वही है.
We're in the same spot as the Buddha was in.
और हम उसी जगह पर हैं जहाँ स्वयं बुद्ध थे.
But the Buddha is not there.
लेकिन बुद्ध वहाँ नहीं है.
Not literally, not physically.
यानी वास्तविक रूप से उनका शरीर, उनकी मौजूदगी वास्तविक रूप से नहीं है.
That the puja we're doing tonight says the Buddha was born as we are born.
आज की जो हम पूजा करेंगे उसमें वहाँ कहा गया है हमारा भी जन्म वैसे ही हुआ, बुद्ध का भी जन्म वैसे ही हुआ जैसे हम जन्मे थे.
And of course, if the Buddha was born as we are born, the Buddha dies as we will die.
तो अगर बुद्ध का जन्म हमारा जैसे जन्म हुआ वैसे अगर जन्म हुआ है तो हमारा भी अंत वैसे ही होगा जैसे बुद्ध का भी यानी परिनिर्वाण हुआ.
But yes, the Buddha is not literally present.
लेकिन यह सत्य है कि वास्तविक रूप से बुद्ध वहां मौजूद नहीं है.
Actually, we feel he is.
लेकिन वाकई में हम महसूस करते हैं कि बुद्ध वहाँ है.
I certainly feel that when I go down there.
निश्चित ही मुझे ऐसे लगता है जब मैं वहाँ जाता हूँ.
At least sometimes I feel that.
कभी कभी मैं ऐसे महसूस करता हूँ.
I feel the presence of the Buddha.
मैं बुद्ध की उपस्थिति को वहाँ महसूस करता हूँ.
Because the place is associated with the Buddha, my imagination can bring him there.
क्योंकि जो जगह है वह बुद्ध से संबंधित है मेरी जो कल्पना है मेरी प्रतिभाओं में मैं बुद्ध को वहां ला पाता हूं.
And because lakhs and lakhs of Buddhists feel the same, it's very strong there.
और ऐसे ही लाखों जो बौद्ध वहां आते वैसा ही वो महसूस करते.
Earlier I was just seeing one old Chinese nun.
पहले मैं वहां केवल एक पुरानी जो चीन की भिक्षुनी थी उसे मैं देखता था.
And her limbs were all bent.
और उनके जो हाथ थे वह मुड़े हुए थे.
But she was just bowing, bowing, bowing.
लेकिन फिर भी वह जो यानी नमन कर रही थी और प्रणाम पंचांग प्रणाम कर रही थी.
Again and again and again for hours.
बार 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 घंटों तक.
The Buddha was there for her.
क्योंकि उसके लिए बुद्ध वहां मौजूद थे.
You see all those Tibetans just bowing and bowing.
आप देखते हैं सारे जो तिबेटन लोग हैं वो केवल वहां पे प्रणाम करते रहते हैं नमन करते रहते हैं.
The Buddha is there for them.
उनके लिए बुद्ध वहां होते हैं.
So in our feeling, in our imagination, we are in the presence of the Buddha.
तो हमारी भावना भावनिक स्तर पर या हमारी कल्पना के स्तर पर हम बुद्ध के साथ होते हैं.
But brothers and sisters, I want to ask, are we really in the presence of the Buddha?
लेकिन भाई और बहनों मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्या हम वाकई में बुद्ध के संपर्क में है उनके उपस्थिति में है.
Or rather, are we really in the presence of the Buddha?
क्या हम जो बुद्ध है उनके संपर्क में है.
We feel something, yeah, we feel something there.
हम महसूस करते हैं कुछ तो भी वहाँ.
Is it the Buddha?
क्या वे बुद्ध है.
Again, Bhante said something very interesting to me.
और फिर से कुछ तो भी रोचक बात भंते ने मुझे बताई.
I was discussing with him various issues, which some of you will have seen in papers that I've written.
अलग-अलग जो बातें हैं मुद्दों पे मैं बात कर रहा था जो आप मेरे आलेखों में आपने पढ़े होंगे.
I was very, very fortunate to have very deep Dhamma discussion with Bhante.
मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि ऐसे गहरे संवाद मैंने भंते के साथ किए धम्म के बारे में.
And among other things, we were talking about the strong habit that people have in the West of thinking they know something when they don't.
तो एक ऐसी यानी धारणा है पाश्चिमात्य जगत में कि लोग ऐसा सोचते हैं वो ऐसा वो मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं जबकि वो नहीं जानते.
Actually, people do it in India too.
भारत में भी ऐसे ही है.
But it's a very strong habit, even within our order in the West, for people to assume they've realized something dhammically when maybe they haven't.
तो ऐसा यानी पश्चिम जगत में लोग अक्सर मानते हैं कि उन्होंने धार्मिक स्तर पर कुछ तो भी हासिल कर लिया है जबकि वो हासिल नहीं हुआ होता.
So in the middle of this discussion, Bhante said something that really shocked me.
तो इस चर्चा के दौरान उन्होंने कोई तो भी बात मुझे कही जो मुझे अचंबा कर गई.
He said he thought that most order members did not know who the Buddha was.
Bhante ने ऐसे सोचा कि बहुत सारे संघ सदस्य यानी धर्मचारी और धर्मचारिणियां नहीं जानते कि बुद्ध कौन थे.
Oh, I was quite shocked.
तो उससे मुझे थोड़ा झटका बैठा.
I didn't say, oh, do you think I know or not?
अब मैंने यह नहीं पूछा कि बंते आप जानते हैं क्या मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ.
But inevitably that thought came to my mind.
लेकिन वह विचार मेरे भी मन में आया.
But in a way I know what he means.
लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं समझ पा रहा हूँ बंते क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं.
We know the facts of the Buddha's life.
हम बुद्धों के बुद्ध के जीवन के तथ्यों को जानते हैं.
We can even feel something of his presence.
उनकी जो उपस्थिति है उसके बारे में हम कुछ महसूस कर सकते हैं.
We know that here he gained enlightenment.
हम जानते हैं कि यही इस स्थल पर उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई.
We know that under this tree or it's the ancestor of this tree he sat.
तो उसी वृक्ष के पूर्वज जो थे या उसी वृक्ष के तले उनको संबोधि की प्राप्ति हुई.
We know all that sort of thing.
यह सारी चीजें हम जानते हैं.
We know many places in India where he was.
हम भारत के कई जगह को जानते हैं जहाँ बुद्ध थे.
We know the details of his life.
उनके जीवन के जो बारकाइयां हैं उनके बारे में हम जानते हैं.
We even know that this little piece of bone was his piece of bone.
यह हम भी जानते हैं कि यह छोटा सा जो अंश है उनके शरीर का जो उनकी हड्डी है वो उनकी है यह हम जानते हैं.
But of course all of that is not the Buddha.
लेकिन यह सब बातें बुद्ध नहीं है.
The Buddha made this clear himself.
बुद्ध ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है.
He said, "Those who know me by my body, they do not know me."
बुद्ध कहते हैं जो मुझे कायिक रूप से जानते या शारीरिक रूप से देखते वह मुझे नहीं देखते या वो मुझे नहीं जानते.
The Buddha isn't defined by his body.
तो बुद्ध उनके शरीर से परिभाषित नहीं होते.
You remember that when he left here, he was on the road to Sarnath.
आपको पता होगा यह जो रास्ता जाता है इसी रास्ते से वो सारनाथ गए थे.
Do I mean Sarnath, the deer park?
Yeah.
I always get them mixed up. He was on his way to Sarnath.
तो यहाँ से वो सारनाथ जा रहे थे.
And he met a wanderer from a different sect.
तो दूसरे परंपरा से या पंथ से किसी प्रवासी को वो वहाँ मिले.
And he was so impressed by the Buddha that he just didn't know what he was seeing.
तो बुद्ध को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि वो अचंभे में पड़ गए कि वो क्या देख रहे उन्हें समझ में नहीं आया.
He wanted to know, well, are you some sort of deva?
तो उन्होंने वो पूछना चाहते थे कि उन्होंने उनको पूछा कि क्या आप किसी प्रकार के देव हैं?
Well, that's an obvious question, isn't it? He was shining so brightly.
वह बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न था क्योंकि बुद्ध चमक रहे थे.
So, was he some sort of deva?
क्या वो किसी प्रकार के देव थे?
The Buddha said no.
बुद्ध ने कहा नहीं.
So, well, if he's not a deva, maybe he's some sort of devil.
तो उन्होंने कहा अगर आप देव नहीं है तो फिर कोई आप शैतान होंगे.
Raksha.
Yaksha.
Yeah. Maybe he was something like that.
तो या आप कोई यक्ष होंगे.
So the Buddha said no.
बुद्ध ने कहा नहीं.
Well, are you a human being then?
तो उन्होंने कहा क्या आप मानव हैं?
No.
बुद्ध ने कहा नहीं.
So, the Buddha is defying all the categories of our thought.
तो बुद्ध इस प्रकार से हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं जो भी हम सोचते हैं.
We like to put people in categories.
हम लोगों को बक्से में रखना चाहते हैं.
You know, English, Indian.
यह अंग्रेज है, यह भारतीय है.
Man, woman.
स्त्री है, पुरुष है.
This caste, that caste.
यह जाति, वह जाति.
This job, that job.
यह आपका job. या नौकरी.
And when we've got these labels, we think we've got the person.
तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई हम अगर उनके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं तो हमें वो व्यक्ति मिल गया या ऐसे हम उसे पहचानते हैं.
You all experienced this, somebody trying to put you in a box and then they don't see you.
तो ऐसे ही लोग आपको देखते हैं, आपको किसी कटघरे में वो रखना चाहते हैं और फिर वो आपको समझना चाहते हैं, वाकई में वो आपको देखते नहीं है.
Sometimes people even say, oh, you're a dhammachari.
अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप धर्मचारी हैं.
In other words, they dismiss you because they've got a bad impression of dhammacharis. I don't know why.
क्योंकि ऐसा बोल के वो आपको नकारना भी चाहते हैं क्योंकि किसी धर्मचारी का जो अनुभव है वह बुरा हो सकता है.
Or sometimes they'll say, "Oh, you're a dhammachari."
या कभी-कभी प्रभाव से वो कहते हैं कि आप धर्मचारी हैं.
Because they've got a very rosy view of a dhammachari.
क्योंकि फिर धर्मचारी की एक ऊंची प्रतिमा उनके मन में होती है.
But they don't see you.
लेकिन वो आपको वाकई में देखते नहीं है.
Yeah, in a way, you're a human being before you're a dhammachari or dhammacharini. Huh?
निश्चित रूप से धर्मचारी या धर्मचारिणी होने के पहले आप इंसान हैं.
In a way, you're not even a human being.
और वैसे आप एक मानव ही है, ऐसा नहीं है.
So the Buddha said, "I'm not a human being."
इस उद्देश्य उन्होंने कहा कि मैं मानव भी नहीं.
If you think of me just in those terms, you don't know me.
अगर आप केवल उन कड़घरे में रखकर ही मुझे देखेंगे या वर्गीकरण में मुझे देखेंगे तो फिर आप मुझे नहीं देखेंगे.
This is the big danger that we have in the West. We try to make the Buddha into a human being.
तो यही सबसे बड़ा खतरा है पश्चिम जगत में, हम उन्हें सामान्य मानव बनाना चाहते हैं.
And when we think of him as a human being, we don't see the Buddha.
और अगर हम उसे सामान्य व्यक्ति या मानव के रूप में देखते हैं तब हम बुद्ध को नहीं देखते.
But my Bharatiya bhai aur behno, what do you do here?
लेकिन मेरे भारतीय भाई और बहनों, आप लोग यहाँ क्या करते हैं?
There's a tendency to see him as a deva.
यहाँ पे प्रकार है उन्हें ईश्वर करके देखने का.
And of course, when you see him as a deva, you don't see the Buddha.
अगर आप उन्हें ईश्वर बनाते हैं तो फिर आप बुद्ध को नहीं देखते.
You see him as somebody who can give you blessings.
आप ऐसा देखते हैं जो आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है.
You see him as somebody who can save you.
जो आपको बचा सकता है.
If you make the right offerings, you'll get some benefit.
तो आप अगर उनको कुछ अर्पण करेंगे तो फिर आपको कुछ उससे फायदा होगा.
These are the two tendencies, the two extreme tendencies.
तो यह दोनों भी सिरे की यानी आदतें हैं, प्रवृत्तियां हैं.
In the West, we're more inclined to bring the Buddha down, so he's just a human being.
तो पश्चिम जगत में हम बुद्ध को नीचे लाना चाहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनाना चाहते हैं.
In India, you're more likely to make him into a deva.
और भारत में उसे हम ईश्वर बनाने की कोशिश करते हैं.
But he's neither of those things.
लेकिन यह दोनों चीजों में बुद्ध नहीं
है. Well, how do we know the Buddha then?
फिर हम बुद्ध को कैसे जानते हैं?
Well, the Buddha made this clear to us himself.
बुद्ध ने स्वयं ही इसके बारे में हमें स्पष्टता दी है.
Yes, he said, "Those who by my body, my form, see me, they don't see me."
अगर आप मुझे मेरे आकार या शरीर में देख रहे हैं, वो लोग मुझे नहीं देखते.
He said, "The Buddha is seen through the Dhamma."
वो कहते हैं कि बुद्ध को धम्म के रूप से या धम्म के द्वारा ही देखा जा सकता है.
If you see the Dhamma, you see the Buddha.
अगर आप धम्म को देखते हैं तब आप बुद्ध को देखते हैं.
If you see the Buddha, you see the Dhamma.
अगर आप बुद्ध को देखते हैं तब आप धम्म को भी देखते हैं.
These are the very words of the Buddha in the Pali Canon itself.
यही Pali सूत्र में बुद्ध ने स्वयं कहा.
But what does that really mean?
लेकिन इसका फिर अर्थ क्या है?
Well, of course, there's so much one could say.
अब बहुत सारी चीजें इसमें कही जा सकती है.
But perhaps the most important things for us now are that we see the Buddha as marked by the three lakshanas.
तो हम बुद्ध को तीन लक्षणों के द्वारा देख सकते हैं.
And we see him as embodying the three vimokshamukhas.
तो तीन बुद्ध के यानी मूर्त स्वरूप है जिसे तीन विमोक्षमुख कहते हैं.
We see him as anicca.
हम उसे उन्हें अनित्यता के रूप में देखते हैं.
His body arose, his body went.
उनका शरीर आया, उनका शरीर चला गया.
We see him as anatman.
उन्हें हम अनात्म के रूप में देखते हैं.
There's no fixed Buddha.
ऐसा कोई भी पक्का बुद्ध है ही ऐसा नहीं है.
That's why he can't be a deva.
इसीलिए वो ईश्वर नहीं है.
A deva is just a super atman.
क्योंकि जो ईश्वर होते हैं या देव होते हैं वह उच्च आत्मा या सुपर आत्मा कह सकते हैं.
But the Buddha has no soul, no atman.
लेकिन बुद्ध में कोई ऐसी आत्मा नहीं है.
Like nothing does. Hmm?
जैसे किसी भी चीज में, अन्य वस्तुओं में आत्मा नहीं है.
If we try to grasp onto the Buddha as a thing, we will suffer.
अगर हमने बुद्ध को किसी वस्तुनिष्ठता में डाल दिया या वस्तु चीज बनाकर रख दिया तो फिर हमें तकलीफ होगी.
So yes, we can see that the Buddha is not defined by the viparyasas.
तो बुद्ध जो है वह विपर्यासों के द्वारा परिभाषित नहीं होते.
He's not permanent. He's not hasn't got Atman. He's not giving through clinging satisfaction.
तो बुद्ध नित्य नहीं है, उनमें कोई आत्मा नहीं है और उनसे आसक्त होकर हमें कोई समाधान नहीं मिलेगा.
So what is he?
तो फिर वे क्या है?
Well, corresponding to the three lakshanas are the vimokshamukhas.
तीन इन लक्षणों के उनके अपने विमोक्षमुख है.
Corresponding to anityata is animita.
अनित्यता के लिए अनिमित विमोक्षमुख है.
So what does animita mean?
अब अनिमिता का अर्थ क्या होता है?
Animita is a sign.
अनिमिता का अर्थ होता है संकेत या कोई चिन्ह.
But the Buddha cannot be known through a sign.
लेकिन बुद्ध जो है चिन्हों के द्वारा नहीं जाने जा सकते.
What that means is he cannot be known through a thought.
इसका अर्थ यह होता है कि केवल विचारों से वह जाने जाएंगे ऐसा नहीं है.
You can't have a set of concepts and think that you've understood the Buddha.
आप संकल्पनाओं की कोई याद ही नहीं लगा सकते और फिर मैं बुद्ध को जाना ऐसा आप नहीं कह सकते.
Any label we put on the Buddha is not the Buddha.
जो कुछ भी आप चिन्ह या लेबल बुद्ध के ऊपर लगाएंगे वह बुद्ध नहीं है.
The Buddha is a mystery, if you like.
उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बुद्ध एक रहस्य है.
We cannot know him with our ordinary minds.
हमारे सामान्य मस्तिष्क से या कानों से हम उन्हें नहीं जान सकते.
So the word Buddha, that's what it means.
तो यह जो शब्द बुद्ध है यह इसका अर्थ है.
It means something beyond our understanding.
इसका अर्थ यह है कि आपके समझ से कोई तो भी बात परे.
Then corresponding to anatmata is shunyata.
और अनात्म से जो विमोक्ष मुख आता है वह है शून्यता.
There's no fixed essence.
किसी भी चीज का कोई भी पक्का सार नहीं है.
There's nothing we can grasp onto and say this is the Buddha.
ऐसी कोई भी ठोस बात नहीं है जिसे हम पकड़कर कह सके कि यह बुद्ध है.
The Buddha is not to be known through this conditioned world.
यह जो संस्कारित जो जगत है उसके द्वारा बुद्ध को नहीं जाना जा सकता.
Whatever the Buddha is, he's not these things.
जो कुछ भी बुद्ध है वह सब जो चीजें हम जानते हैं वह बुद्ध नहीं है.
He's indefinable.
वह अपरिभाषित है, उन्हें शब्द में रखना मुमकिन नहीं है.
He's unknowable by the ordinary mind.
जो सामान्य मन है उससे उन्हें जानना कठिन है.
And then finally he's apranihita.
और तीसरा जो विमोक्ष मुख्य वह है अप्रणिहिता.
That means having no tendency in any particular direction.
इसका अर्थ यह होता है किसी भी दिशा में कोई ऐसी विशिष्ट प्रवृत्ति नहीं होती.
The Buddha doesn't need anything.
बुद्ध को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है.
He doesn't lack anything.
किसी चीज की कमी उनमें नहीं है.
He doesn't want anything.
उन्हें किसी चीज की जरूरत या आवश्यकता भी नहीं है.
If you like, everything is there.
आप ऐसा कह सकते हैं कि हर चीज वहाँ है.
So he feels no suffering.
तो इसलिए उन्हें दुख नहीं होता.
He's completely still.
वह पूरी तरह स्थिर है.
At the same time, he's completely involved with everything.
लेकिन उसी वक्त वह हर जगह सम्मिलित है, हर जगह मौजूद है.
So all of that tells us we can't really understand the Buddha.
यह सब बातें हमें यह बताती है कि हम बुद्ध को जान नहीं सकते.
We can't really know the Buddha.
हम वाकई में बुद्ध को जान नहीं सकते.
The Buddha is absent.
बुद्ध जो है वह अनुपस्थित है, गैर मौजूद है.
We need to recognize that the Buddha is absent from our ordinary point of view.
तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे सर्वसामान्य अनुभवों में बुद्ध मौजूद नहीं है.
And that needs to be a definite sense, a definite feeling.
और वो जो है यह आपका एक ठोस भाव होना चाहिए.
It's not just a thought, it's a definite experience.
यह केवल विचार नहीं है, यह आपका ठोस अनुभव है.
The Buddha is not here.
बुद्ध यहाँ नहीं है.
The Buddha is something beyond here.
इससे परे कहीं तो भी बुद्ध है.
Unless we can experience that, we can never experience the Buddha.
जब तक हम यह अनुभव नहीं करेंगे हम बुद्ध को अनुभव नहीं कर पाएंगे.
You know, it's a famous saying, isn't it? You can't pour water into a glass that's already full.
तो अक्सर ऐसे कहा जाता है, कहावत ऐसी है कि भरे हुए मटके में जो पानी से भरा हुआ है या ग्लास जो पानी से भरा हुआ है उसमें अधिक पानी नहीं डाला जा
सकता। Whatever water you pour in just flows over the side.
जो कुछ भी पानी फिर भरे हुए ग्लास में आप डालेंगे वो गिर जाएगा।
You need to recognize the glass is empty.
आपको पहचानना जरूरी है कि वह जो ग्लास है वह रिक्त है, खाली है।
You don't know who the Buddha is.
आपको पता नहीं है कि बुद्ध कौन है।
If you know that you don't know, then you can begin to know.
अगर आप यह जानते हैं कि आप बुद्ध को नहीं जानते हैं तो फिर आप उन्हें जानना शुरू करते हैं।
If you know that the Buddha is beyond your understanding, then you begin to understand him.
अगर आप यह समझते हैं कि बुद्ध आपके समझ से परे है तब उनकी कुछ समझ आना शुरू होती है।
This is not just playing with words.
यह शब्दों का खेल नहीं है।
There needs to be a definite sense that the Buddha is not here.
यह निश्चित भाव है कि बुद्ध यहाँ नहीं है।
Well, look in your own mind.
अब आप अपने मन को देखिए।
Look at the way in which your own mind is always concerned with one thing.
देखिए आपका मन हमेशा या किसी ना किसी बात से उसके बारे में सोचते रहता है।
Me.
वह है मैं।
You, that is. Everything comes back to me.
तो हर चीज़ जो है वो स्व पे आती है।
We have to recognize that the Buddha is not found in me.
तो हमें पहचानना है कि जो स्व है उस स्व में बुद्ध को खोजा नहीं जा सकता।
The Buddha is not part of my identity.
बुद्ध जो है वह मेरे पहचान का हिस्सा नहीं है।
So we have to recognize that.
तो हमें उसे जानना जरूरी है।
I don't know whether you experience this, but I often experience this very strongly down at the Mahabodhi temple.
अब आप उसका अनुभव करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित ही वह बोधि वृक्ष के नीचे जब जाता हूँ तो महसूस करता हूँ।
I'm sitting here at the most important place in the universe.
जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है उसके बिल्कुल करीब मैं बैठा हूँ।
The Vajrasana.
जो वज्रासन।
The pivot of human history.
जो
The turning point of
human history. जो पूरी मानवीय इतिहास का एक बहुत बड़ा जो मोड़ है वह मोड़।
I'm sitting where the Buddha gained enlightenment.
मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया।
But what am I thinking?
लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ?
Oh, why didn't that mullah stop shouting?
तो अब वो जो मुल्ला है वो क्यों नहीं अपना यानी चिल्लाना बंद करता?
Why don't those Thais chant more nicely?
ये थाई लोग अच्छे से क्यों नहीं गाथा कहते?
Why do three people lead a loudspeaker?
अब तीन लोगों को loudspeaker की क्या जरूरत है?
Why are all those mosquitoes there?
अब ये मच्छर यहाँ क्यों है?
And so on, wagara wagara.
वगैरह वगैरह।
All things to do with me.
तो यह सारी चीजें जो है मेरे स्व से जुड़ी हुई है।
All the time the Buddha is just there.
वैसे देखा जाए तो हर वक्त बुद्ध वहाँ मौजूद है।
So I have to recognize he's not in my ordinary mind.
तो यह मुझे पहचानना जरूरी है कि मेरे सामान्य मन में बुद्ध नहीं है।
I need to open up to the Buddha's absence.
तो बुद्ध की जो अनुपस्थिति है उस अनुपस्थिति के प्रति मुझे अपने आप को खुला करना है।
When I recognize that absence, then I can begin to experience the Buddha's presence.
तो जब मैं बुद्ध की अनुपस्थिति को महसूस करता हूँ तब मैं बुद्ध के उपस्थिति के संपर्क में आता हूँ।
So I hope this means something to you.
तो मुझे आशा है ये जो मैंने कहा इसका कुछ संदर्भ या अर्थ आपके लिए है।
If we want to go for refuge, we need to recognize that there's something beyond us.
अगर आपको शरण गमन करना है बुद्ध को तो आपको पहचानना है कि आपके परे भी कुछ बातें हैं।
We need to recognize that the Buddha is completely beyond our experience.
हमें यह पहचानना है कि बुद्ध जो है वह पूरी तरह हमारे अनुभव से परे है।
He's beyond our ordinary mind.
वह हमारे जो सामान्य मन है उस सामान्य मन से परे है।
And then we can begin to experience the little bit of contact with the Buddha.
तब हम थोड़ा सा उनके साथ संपर्क बनाना शुरू करते हैं।
As the contact with the Buddha is going completely beyond our experience.
बुद्ध के साथ जो संपर्क है वह संपर्क होता है जो आपके स्व से पूरीता परिपूर्णता परे होता है।
This is what Bhante meant, I think.
मुझे लगता है यह भंते का अर्थ था।
We need to start by recognizing the Buddha's not there.
हमें शुरुआत करनी है इस बात से कि बुद्ध वहाँ अनुपस्थित है।
A deva is there all the time.
देव हमेशा ही वहाँ है।
We just need to call them, they're there.
आप उनको बुलाइए वो आ जाएंगे।
But the Buddha we need to recognize is in a completely different realm.
लेकिन हमें यह पहचानना जरूरी है कि बुद्ध जो है वह बिल्कुल दूसरे ही अस्तित्व में है.
Not of course a heaven world or anything like that.
अब कोई स्वर्ग की बात नहीं है.
But on another level, if you like.
लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं दूसरा अस्तित्व का स्तर.
So I'd like us to try to understand what this means today.
तो मैं यह चाहता हूँ कि इसे हम गहराई से समझें.
When we go down to the Mahabodhi Temple, try to realize this.
तो जब हम महाबोधि विहार में जाएंगे तो इस बात को समझने की या महसूस करने की हमने कोशिश करनी चाहिए.
Then we begin to clear ourselves away.
तो फिर हम धीरे धीरे हमारा जो रास्ता है उसे साफ करेंगे.
If we start off by recognizing the Buddha's absence, we can begin to get out of the way.
अगर हम बुद्ध के अनुपस्थिति को पहचानते हैं तो तब हम हमारे रास्ते को खुला करते हैं.
And then we begin to experience something coming through.
और फिर हम शुरू करते हैं अनुभव का आना.
Of course, another way of putting that is that in order to meet the Buddha, we must die.
तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, अगर आपको बुद्ध को मिलना है तो आपको मरना है.
That's what our dhammic death practices are about.
तो यही हमारे धार्मिक मृत्यु का जो हम आचरण करते हैं वह उसका अर्थ है.
We're getting rid of our attachment to self.
तो जो हमारे स्व के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति से हम मुक्त होने की कोशिश करते हैं.
We're holding self-attachment to one side.
तो हमारी जो स्व आसक्ति है उसे हम बाजू करते हैं.
And then we can begin to experience the Buddha's presence.
और फिर हम बुद्ध के उपस्थिति को महसूस करना या अनुभव करना शुरू करते हैं.
If we don't get out of the way, it's not the Buddha we experience.
तो
if we don't get out of the way,
yeah.
we don't experience the Buddha.
Yeah.
अगर हम अपने स्व को बाजू नहीं करते तब हम बुद्ध को अनुभव नहीं कर सकते.
What we experience is a deva.
तब अब आप जो अनुभव करते हैं वो देव होते हैं.
The Buddha has to have can only appear when we are not there.
बुद्ध तभी आते हैं या अनुभव में आते हैं जब वहाँ स्व नहीं होता.
Deva is just another form of Atman.
क्योंकि देव जो है वह आत्मा का दूसरा स्वरूप है.
Existing for our Atman.
जो हमारे आत्मा के लिए होता है.
So we have to get all of that out of the way.
तो उन सब से हमें अलग होना है, मुक्त होना है.
And Bhante's suggestion is that by reflecting on the Buddha's absence, we may achieve that opening up.
तो भंते ऐसा कहते हैं, अगर हम उनके अनुपस्थिति को अगर पहचानते हैं, तो शायद हम बुद्ध के प्रति खुले हो सकते हैं.
So when you meet in your groups today, well, first of all, just check in with each other.
तो जब आप अपने गुटों में भी आप मिलेंगे, तो एक दूसरे के बारे में आप बात कीजिए.
You'll need to introduce yourselves to each other.
एक दूसरे को आप यानी अपना परिचय दीजिए.
And just say how you are to begin with.
और बताइए कि आप कैसे हैं.
And then I'd like to ask you to try to engage with this theme of the Buddha's absence.
और मैं आपको यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि बुद्ध के अनुपस्थिति के बारे में आप चर्चा कीजिए.
If it's not clear, well then discuss it.
अगर आपको यह स्पष्ट नहीं है तो आप इसकी चर्चा कीजिए.
Because it's not just a theory.
यह केवल सिद्धांत नहीं है.
It's an experience that we can have.
यह ऐसा अनुभव है जो हम सब लोग अनुभव यानी जिसका हम अनुभव करते हैं.
And then we can go on to approach the Buddha more closely.
और फिर हम धीरे धीरे बुद्ध के प्रति बढ़ सकते हैं.
Thank you.